ओके लेट्स स्टार्ट। अध्याय 11 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप विराट रूप अध्याय श्लोक क्रमांक 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान ने क्या बोला था। बोला था कि कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्ध हो, मैं काल के रूप में सबका नाश कर रहा हूं और तुम्हारे अलावा पांडवों के अलावा सब कोई मारे जाएंगे। ये पहले से भगवान ने निर्धारित कर दिया था। इसमें कुछ दिखाना तो है नहीं, नमाज कर दिया, इस भक्तों का ध्यान पट जाता है। तो अब वो उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं, इससे पहले तक वो मित्र के रूप में देख रहे थे। ध्यान देना चाहिए कि जो द्वारका के भक्त हैं उनका जो प्रेम है वो घी की तरह है। घी को एक बर्तन में रखते हैं तो जब ठंडा होता है तो अगर उसके पैंदे में सोने का सिक्का रखा हो तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब गर्मी होती है तो वो घी पिघल जाता है तो ऐश्वर्य दिखने लगता है। तो जब भगवान ऐश्वर्य दिखाते हैं द्वारका के भक्तों को तो उस समय उनका प्रेम शिथिल हो जाता है। लेकिन भगवान गोलोक के भक्तों का जो प्रेम है वो कभी शिथिल नहीं होता, चाहे कितना भी भगवान ऐश्वर्य दिखाएं। तो यहाँ भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो जो उनका सहज प्रेम था वो शिथिल हो गया और वो घबरा गए कि कौन है व्यक्ति। ठीक है, तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारम्बार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। तो इसमें कोई समझाना नहीं है, अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि अर्जुन की प्रार्थना हम सीखें। प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि बहुत सारी प्रार्थनाएं भक्तों ने करी हैं भगवान को, और एक प्रार्थना जो अर्जुन की है भगवद गीता की उसको भी वो रेफर करते हैं। तो हम देखते हैं, अर्जुन वाचा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। जो भक्त हिंदी पढ़ सकते हैं कृपया उसका अनुवाद पढ़िएगा माइक पे, कोई भी पढ़िए। यस,
अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार
स्पीकर को थोड़ा सा घुमा दीजिए, उल्टा घुमा दीजिए। यस, हाँ।
अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं।
ओके, क्या फायदा है नाम से? स्पीकर को पूरा घुमा दीजिए उस तरफ। यस, हाँ, नाम का प्रभाव क्या होता है? दो बोलिए माइक पे, अभी क्या सीखा आप?
हम भगवान के प्रति अनुरक्त होते हैं,
पहले हर्षित होते हैं।
हाँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान की भक्ति कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस भक्ति से अन्य लोग भी बड़े प्रसन्न होते हैं। वृंदावन चंद्र प्रभु अपने लेक्चर में समझा रहे थे कि ऐसे गांव में जाकर जब लोग मंगल आरती करते थे तो गांव वाले आते नहीं थे मंगल आरती में, लेकिन बोलते थे, साधु जी, आपका भजन बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भक्तों का ये महिमा है कि जब भक्ति करते हैं, भक्ति की महिमा है कि उस भक्ति से अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त लोग तो प्रसन्न होते ही हैं, इसीलिए आप देखिए जब भक्त लोगों को कीर्तन करता हुआ देखते हैं, आनंद में झूमता हुआ देखते हैं, तो अन्य लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ढर्रे समझते हैं, रूटीन वे में हरि नाम संकीर्तन नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत आनंद आता है संकीर्तन करने में या कथा करने में भी। और इसी प्रकार से दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? अनुरक्त होते हैं। जितना हम भगवान के नाम रूप गुण लीला के संपर्क में आएंगे उतना ही अधिक भगवान से हम अनुराग अपने जो हृदय में है वो जागृत करेंगे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और जितना हम भगवान के प्रति आसक्त होंगे उतना ही भगवान को हम समझ पाएंगे। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या?
बिल्कुल सही बोल।
मेरा सपोर्ट करिए आप थोड़ा, गीता से किसी को याद है? मैं शब्द यूज कर रहा हूँ आसक्त मन,
मया अनासक्त।
वेरी नाइस, मया अनासक्त नहीं, मया आसक्त मन। मया आसक्त मन पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्सुणु। सुनना पड़ेगा तब तब होगी आसक्ति। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे हम दो लाभ देख रहे हैं, नाम से सुख मिलता है और नाम से भगवान के प्रति आकर्षण होता है। मैं ये बात बोलने ही वाला था कीर्तन के पहले कि भगवान की कृपा, राधा रानी की कृपा का अर्थ यही है कि हम उनके प्रति अधिक से अधिक आकर्षित हों। तो ये इसी कारण से भगवान अपने नाम को यहाँ पे प्रकट करते हैं। प्लीज कंटिन्यू।
यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, या ठीक ही हुआ?
क्यों भाई असुर भाग रहे हैं? अरे सिंपल सा उत्तर है, क्यों भाग रहे हैं?
क्योंकि वो भगवान से भयभीत है, भगवान से अनुरक्त नहीं है।
यस, क्यों भयभीत है?
क्योंकि भगवान उनके समक्ष काल के रूप में आते हैं और भक्तों के समक्ष प्रेम।
और उनके समक्ष काल के रूप में क्यों आते हैं?
क्योंकि वो उनके उनसे अनुरक्त नहीं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं।
सब लोग जानते हैं कि जैसे बिल्ली चूहे को अपने मुंह में पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुंह में पकड़ती है, पकड़ती है कि नहीं पकड़ती? लेकिन चूहे का अनुभव और बिल्ली के बच्चे का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि वही भगवान अपने भक्तों की, पांडवों की रक्षा कर रहे हैं और बाकी सबका ध्वंस कर दे रहे हैं। यस,
तात्पर्य कृष्ण से कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पृष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है, उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन ना कर सके, वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ करते हैं वह सबों के हित में है।
ये तो आप सब जानते हैं कि जो लोग महाभारत के युद्ध में मरे थे उन्हें क्या गति प्राप्त हुई थी? मोक्ष, मतलब वैकुंठ प्राप्ति हुई थी। कितनी बार समझाया मैंने, प्राण निकल जाएंगे लेकिन सीखेंगे नहीं भक्त, वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान का ये नियोजन था, कोई भी व्यक्ति मरता तो उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होता। तब कहते हैं अरे कैसे, भगवान तो एक रथ पे बैठे हुए थे तो भगवान कैसे व्यवस्था कर सकते हैं सब जगह, क्योंकि वो भगवान है।
वैकुंठ में तो अलग अलग सायुज मुक्ति वगैरह, क्योंकि अगर वो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं वो तो
क्या वैकुंठ में सायुज मुक्ति मिलती है? सायुज नहीं, सारूप्य सामिप्य मिलता है। तो उसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से, उद्धव जी स्वयं इस बात को श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में बोलते हैं, विदुर जी को से बोलते हुए कृष्ण के रिमेम्बरेंस के रूप में, कि जो व्यक्ति भी उसमें मरा, भगवान कृष्ण को देखते हुए मरा, भगवान के धाम चला गया। तो ये कृपा है कि नहीं है ना? वो जीव अनादि काल से इस जगत में फंसा हुआ था, कितनी बार तो ऐसे ही मरता, लेकिन महाभारत की युद्ध में पार्टिसिपेट किया तो विपक्ष से लड़ा तो भी भगवान ने कृपा करी। और ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वैकुंठ जाने का मतलब क्या होता। थ्योरी में तो भले जानते हो लेकिन अनुभव गम्य बात नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए लोग कभी कभी सोचते हैं भगवान ने पॉलिटिक्स करी, युद्ध कराया, अरे कुछ भी किया बाहर से, लेकिन भगवान ने सब पे कृपा करी। भगवान एक्चुअली ये देख रहे हैं कि उसका उद्धार मैं ऐसे नाक, सीधी नाक पकड़ के नहीं कर सकता तो उल्टे से पकड़ लेता हूँ, ऐसे हरे कृष्ण तो करेगा नहीं, चलो आओ युद्ध में आओ लड़ो, मैं रहूंगा सामने और कितने लोगों को लेके जाऊंगा। माइक पे पूछिए, कर पूछना कुछ। यस,
इतने लोगों ने मर गया तो उनका परिवार लोगों को दुख नहीं हुआ? जैसे उनका तो मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं था ना।
एक मिनट, इन्होंने लगता है पढ़ा नहीं, अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं।
वो तो है लेकिन तो मतलब
तो फिर देखिए ये तो फिर का मतलब क्या हुआ। वैसे ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि युधिष्ठिर अर्जुन ने प्रश्न किया था जब इससे मारे जाएंगे तो इनकी पत्नियों का क्या होगा, लेकिन उसके बाद ही भगवान ने मैनेजमेंट करवाया, युधिष्ठिर महाराज को राज्य का राजा बनाया और उनके राज्य में आप सब पढ़ सकते हैं भागवतम में कहीं कोई भाव नहीं था, कोई दुराचार कुछ भी नहीं था। हम आज देखते हैं कि कोई स्त्री जो है उस पर अगर पति के बिना हो तो सब उस पर अटैक करेंगे, अब उसको परेशान करेंगे, लेकिन राजा अगर स्ट्रांग है तो नहीं कर सकते। ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे लोग 10-12 बजे भी स्त्रियां बाहर जा सकती हैं, हमने कोई भय नहीं होता है क्योंकि जो पुलिस का शासन है वो बहुत कठोर होता है, तो इस कारण से कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी भी स्त्री को दिक्कत नहीं। पर हम मुझे राधा गोविंद महाराज को समझा रहे थे, मेरे मन में हमेशा डाउट रहता था कि ये अर्जुन ने बोला तो सही लेकिन स्त्रियों का संरक्षण किसने किया, तो युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रकार से संरक्षण किया, भगवान ने उनको इस प्रकार से शक्ति दिया। ठीक है, तो यानी कि भगवान हमेशा सबका अच्छा करते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान पांचवें स्कंद में बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं हमेशा उनके कल्याण के बारे में सोचता रहता हूं। देखिए कोई भक्त अगर ठीक से बर्ताव ना भी कर पाए लेकिन अगर भक्ति कर रहा है तो आपने आंखें बंद कर लेनी चाहिए उनके दोषों के प्रति। नहीं तो उदाहरण दे रहा हूं, मैं क्लास दे रहा था बाली में, मैं उठा और प्रसाद लेने जा रहा था, प्रभुपाद जी का ऑल्टर थोड़ा नीचे था, मेरा थोड़ा कट गया हल्का सा, तो एक मक्खी आई उसने पूरा चेहरे को छोड़ दिया, उस घाव पे आके बैठने लगी, मेरे को हल्का सा घाव लग गया, चोट लग गई, तो क्या मैं खराब हो गया, लेकिन वो उस घाव पे ही आके बैठ रही और हटाने के बाद क्या हो रहा, नहीं फिर उसी घाव पे आके बैठ रही। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर कोई भक्त में कोई दोष है तो ध्यान देना चाहिए कि वो दोष केवल गुणों की वजह से है, आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है, वो व्यक्ति उस समय बंधा हुआ है उन गुणों के प्रभाव के कारण ऐसा कार्य कर रहा है, बस ये देखना चाहिए कि वो भजन करना चाहता है भक्ति करना चाहता है वो ठीक हो जाए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे संग ऐसा होगा हो गया तो क्या हम भी ऐसे चाहेंगे भक्तों के संग भक्तों हमारे संग बर्ताव करें, देखो कितना निकृष्ट व्यक्ति है, कितना निकृष्ट व्यक्ति है, कितना खराब व्यक्ति है, हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारी मदद की जाए, नहीं? तो ऐसे ही भक्तों को उदार हृदय वाला होना चाहिए और है नहीं तो एस्पायर करना चाहिए। खैर ये थोड़ा सा पॉइंट के उधर था लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से भगवान सुहृद हैं ऐसे भक्तों को भी सुहृद होना चाहिए। मेक सेंस टू यू? तो भगवान सुहृद हैं भी और वो जानते भी हैं कि कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो खाली मैं ये बात बोलना चाह रहा था, उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि जो व्यक्ति युद्ध कर रहे थे और बस वाले देखे कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, उतने में अर्जुन के बाण आता है और गर्दन काट के चला जाता है, तो वो लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। अब एक बार जीवन में कृष्ण के सौंदर्य को जिसने सराहा ना किया वो भगवत प्राप्ति को हो गया, तो जो लोग रोज मंगल आरती जाते हैं उनका कहना है क्या, कैमित्य न्याय अप्लाई करेंगे ना? भाई रोज आप जाते हैं देखते हैं ना राधा श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं, कृष्ण बलराम कितने सुंदर हैं, गौर निताय कितने सुंदर हैं। तो वस्तुतः भक्तों को इसलिए मंगल आरती जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि एब्सेंट पी ए पी ए पी, लिखा है गीता में जहां ए पी लिखा रहेगा वो भगवत धाम जाएगा, वो कुछ नहीं लिखा है सर, ये तो बाह्य चीज है, तो बाह्य, लेकिन इंटरनल रीजन क्या है, मैं कृष्ण के स्वरूप को देखूंगा, ध्यान से हर अंग को देखने से हमारी अविद्या नष्ट हो जाती है। एक बात ध्यान देना चाहिए कि अविद्या हम जमा करते हैं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाया मनश्चायम विषयानुपसेवते, विषयों का सेवन हम ज्ञान इंद्रियों से करते हैं तो जमा करते जाते हैं, तो ये खत्म कैसे होगा, इन्हीं ज्ञान इंद्रियों से कृष्ण का स्मरण करना है, कृष्ण का सेवन करना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आंखों से कृष्ण को देखते हैं, कान से सुनते हैं, हमने यहां भी सुना जब भगवान का नाम सुनते हैं तो व्यक्ति बड़ा हर्षित हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान के आने का उद्देश्य केवल यही है कि हमारा अविद्या नष्ट हो जाए। एक दिन हम जरूर सेमिनार करेंगे माता कुंती के वक्तव्य, कृष्ण क्यों आते हैं, हमने वहां पे किया था बाली में, यहां पे भी कभी करेंगे, बहुत सुंदर। कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग वो बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं, लेकिन असली कारण क्या है वो जब हम सेमिनार करेंगे तो बताएंगे, यहीं पे करेंगे। खैर तो भगवान यहां पे स्पष्ट हो रहा है, भगवान अपनी कीर्ति का प्रसार करते हैं ताकि लोगों को सुख मिले और लोग उनके प्रति अनुरक्त हों। तो भक्तों को क्या करना है, भक्तों को भगवान की कीर्ति का प्रसार करना है, प्रचार करना है, जिससे लोगों को सच्चा सुख प्राप्त हो और वो भगवान के प्रति अनुरक्त हो, ये भी हमें सीखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। कस्माचते नानमिरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सत् असत् सदसतत् परं यत्। हु वांट्स टू रीड नाउ? आप पढ़िए।
हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं।
एक इंटरेस्टिंग बात, छोटा सा बात महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि महात्मा मतलब जो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। बहुत सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात। नहीं तो पूरी जगत में हर व्यक्ति केवल अपने कल्याण में लगा रहता, बस सोचता है कि कल्याण हो जाएगा, कल्याण होता नहीं है, सोचता है अपना मेरे को सुख मिल जाए, मेरे को सुख मिल जाए। लेकिन महात्मा मतलब दूसरों के कल्याण के लिए। महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। अर्थात जो व्यक्ति दैवी प्रकृति में आश्रित रहता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, उसमें महात्मा के गुण आ ही जाते हैं। ये भी एक संस्कार ले सकते हैं। भक्ति के प्रभाव से जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है हृदय में, जीवों के प्रति करुणा भावना आ जाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी है। यस, सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं, देवताओं के नहीं, भगवान के गुण भी आने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़िए आगे।
तात्पर्य, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं।
इट्स गुड प्रभुपाद, हम लोग उसको हिट कर रहे हैं, बिल्कुल वही पॉइंट है ना। उदार और अनंत तो है ही, और उदार मतलब आत्मा का एक अर्थ मन होता है, समझते हैं ना, आत्मा का एक अर्थ मन होता है। तो महाआत्मा मतलब जिसका महामन हो, जैसे और अक्रूर जी के केस में भगवान महाराज समझा रहे थे कि उनका महामति मतलब महामन बोलते थे, अर्थात उनका मन कृष्ण में लगा हुआ था। तो जिसका मन कृष्ण में लगा रहता है, वो उसके अंदर कृष्ण का ही स्वभाव आ जाता है, उदारवादी हो जाते हैं। इस संबंध में हम अभी बाली गए थे प्रचार करने के लिए, तो वहां देखा कि वहां पे इतने भक्त उदार हैं, कोई भी गेस्ट कभी भी आए, उस सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था, राज भोग प्रसाद 10 आइटम। आप कभी भी जाइए, दिन में असली कभी भी जाइए। मैं खुश हो गया, हमने कहा वाह देखो कितना उदारवादी भाव है। और उदारवादी ये भी कि ये देखो ये व्यक्ति कृष्ण के प्रति उन्मुख हुआ है, वो जानते हैं कि ये व्यक्ति मांस खा सकता है, कुछ भी खा रहा, कुछ भी कृष्ण की तरफ आ रहा है ना, प्लीज कम प्लीज कम, वो सारा प्रेम देने के लिए तैयार है। इससे लोग कृष्ण भावना के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि इस जगत में अगर कहीं कुछ कमी है तो किस चीज की है, प्रेम की। तो भक्तों को यह भावना रखनी चाहिए, ठीक है, हम अपने प्रति अपने आचरण में हमको दृढ़ रहना चाहिए, इसमें तो कहने की बात नहीं है, लेकिन स्पेशली नए लोगों के प्रति हमें अपने प्रेम को एक्सटेंड करना चाहिए, और रियली बहुत परिवर्तित हो जाते हैं। कहीं कोई प्रेम नहीं करता, किसी से कोई प्रेम नहीं करता। पढ़िए।
अनंत सूचित करता है कि ऐसे कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता है और उन सब के ऊपर है।
इसमें सुंदर एक पास टाइम मुझे याद आ रहा है, जब इंद्र वज्रपात करने जा रहे थे तो उनका वज्र काम नहीं कर रहा था उसके ऊपर, गिरिराज जी के ऊपर। ऐसे तो उसमें बड़ी शक्ति है वज्र में, लेकिन भगवान अंदर से बैठे बैठे कंट्रोल कर रहे हैं। एक और बात महाराज बता रहे थे कि जैसे कार को ड्राइवर अंदर से कंट्रोल करता है, हवाई जहाज को अंदर से कंट्रोल किया जाता है, ऐसे ही भगवान ईश्वर के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत मजेदार पॉइंट है ना। कार को आप बाहर से तो कंट्रोल नहीं करते हो, तो ऐसे आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे भगवान, लेकिन सबके हृदय में बैठे कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक बहुत सुंदर बात इसमें है कि जब कोई व्यक्ति सुकृतिवान होता है तो भगवान ही उसको प्रेरणा देते हैं, तुम जाओ उस भक्त से कुछ मिलो, उससे बातचीत करो। मैं जैसे देखा एयरपोर्ट में बैठा हुआ था, जब मैं लौट रहा था तो अकेले था, कोई बात करने के लिए नहीं था, हरे कृष्ण के जब कर रहा था, और कुआलालंपुर में मैं बैठा हुआ था, अकस्मात एक व्यक्ति आया और वो ये भी जानता नहीं कि इस्कॉन क्या होता है, मेरे को पंडित जी बोल रहा था, समझ गया था प्रभु जी बोलता था इस्कॉन का होता, समझता इस्कॉन का नाम भी जानता नहीं था, वो बठिंडा के व्यक्ति थे। मैं बातचीत करने लगा, फिर उनको मैं थोड़ा प्रसाद दिया और फिर वो मेरे गीता ग्रुप में ऐड हुए, अरे अभी तक छोड़ा नहीं है। तो कहने के उनको हरे कृष्ण मंत्र भी पता नहीं था, तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ सुकृति रही होगी और जुज करके व्यक्ति आ गया। ऐसे व्यक्ति जो मेरे बगल में बैठे हुए थे वो भी उनके कुछ रिश्तेदार पुणे के भक्तों से जुड़े हुए थे, तो वो लोग भक्ति कर रहे थे, वो उनको विश्वास नहीं था, भक्ति नहीं करते थे, लेकिन फिर वो भी गीता ग्रुप में आ गए, उन्होंने थोड़ा प्रसाद दिया, प्रचार किया, समझ में आ गया। तो ये भगवान का अरेंजमेंट है कि वो लोग जो है मेरे बगल में बैठे, मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूं लेकिन मेरे पास ज्ञान बहुत महान है। हम में से कोई व्यक्ति हम अपने आप को महान नहीं मानते लेकिन परंपरा के कारण ज्ञान बहुत पावरफुल है, हम दूसरे से देख करके उसका उद्धार कर सकते, मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे। तो ये कोई सुकृति ही रहती है व्यक्ति की जिस प्रकार से वो अरेंजमेंट रहता है। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ इस संबंध में कि हम लोग जा रहे थे हरियाणा, तो हमारी गाड़ी का चालान कर दिया उसने ओवर स्पीड करने के लिए, तो हम लोग उतरे, आप थे हमारे साथ में क्या, हम लोग उतरे, हमने थोड़ा क्षमा मांगा, हमने कहा आप थोड़ा क्षमा कर दीजिए, तो 1400 रुपये का चालान उसने 400 रुपये में कर दिया। फिर मैंने उसे गीता दिया, थोड़ा बात किया, वो भी मेरे ग्रुप में ऐड हो गया, अब वो रोज गीता सुनता है। तो आप देख रहे हैं कैसे भगवान किस पे कृपा कर देंगे, भले ही हमारे 400 रुपये खर्च हुए लेकिन व्यक्ति कम से कम गीता तो सुन रहा है रोज। तो मेरे ख्याल कहने का अर्थ ये है कि भगवान ही सबको कंट्रोल कर रहे हैं अंदर बैठे बैठे, और यदि कोई व्यक्ति सुकृतिवान है, भले आज वो भक्ति में नहीं आया है लेकिन भगवान आगे जाकर के उसको कंट्रोल करके, देखो देखो जाओ सही बोल रहे हैं, यहां जाओ वहां प्रणाम हो रहा है, वहां जाओ आप जाकर के सुनो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ईश्वर के रूप में, यस कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही समझ लेना चाहिए हम लोग, आप जानते हो कि जब कोई देवता कुछ आपको आशीर्वाद दे रहा है तो अंदर भगवान बैठे हुए हैं, कह रहे ठीक है तो तुम्हारी पूजा करी है तुम उसको इतना इतना दे दो ऐसे कर, और भगवान अगर ना चाहे तो देवता भी हमें कुछ नहीं दे सकते। आगे पढ़िए।
वे समग्र विश्व के आश्रय है, अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली।
बहुत सुंदर बात है बताई गई है यहाँ पे, विश्व के आश्रय है, यानी विश्व में और कोई व्यक्ति हमारा आश्रय नहीं है। और इस संबंध में समझ लेना चाहिए कि भक्त लोग देवताओं को असम्मान नहीं करते, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आश्रय केवल भगवान है, बहुत अंतर। महाराज आप सुनेंगे कैंटो 1 में बता रहे थे, अर्जुन बोलते त्वमेको, त्वम एक मतलब अकेले कृष्ण ही आश्रय हैं, ऐसा नहीं कि और कोई कुछ दे सकता है आश्रय, ऐसा नहीं कि और लोग कुछ दे सकते हैं आश्रय और कृष्ण जो है वो भी दे सकते हैं, तो हम एक मतलब केवल आप ही आश्रय हैं। बड़ा सुंदर बता रहे थे हमारा, कह रहे ये जीव को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आश्रय लेते हैं और देवता लोग क्या बोलते हैं, भगवान जो देवताओं का आश्रय लेके, खुद देवता लोग बोलते हैं आश्रय लेकर भव सागर को पार करना चाहता है, उसकी ऐसी स्थिति है कि कुत्ता की पूंछ पकड़ के ओशन को क्रॉस करे। जहां हम क्लास दे रहे थे वो पहाड़ पे था और सामने ओशन दिखाई पड़ रहा था, तो उनको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रहा कुत्ते की पूंछ पकड़ के आप सागर क्रॉस करेंगे, नो बोलते थे तिदाक, वहां बोलते नो मतलब तिदाक, नो तिदाक, नो तिदाक, नहीं समझ में एकदम तुरंत समझ में आता क्या करोगे आप, तो समझ में आया क्योंकि देवताओं की पूजा करके आप भव सागर को क्रॉस नहीं कर सकते, केवल आश्रय कृष्ण है। यस
अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भदुक्षय विष्णु की नाभि से निकले कमलनाल से हुआ, अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम लोग सुन चुके हैं जन्माद्य अस्य यतः, इससे भगवान की असीमित शक्ति का बोध होता है। आप सोचिए जैसे आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं, आप कहें भाई इसका मालिक कौन है, अच्छा ये मालिक है इतनी बड़ी बिल्डिंग के, बोलते नहीं बोलते आप, आप सिटी में चले जाइए और उसकी बहुत सारी बिल्डिंग हो, बहुत हो, तो आपके अच्छा ये सारी बिल्डिंग भी नहीं, लेकिन क्या वो सारी बिल्डिंग उनके देह से उत्पन्न हुई? अब आप सोचिए कि पूरा पृथ्वी अगर किसी व्यक्ति के शरीर से निकली हो तो कितना शक्तिशाली हो, फिर पूरा सूर्य, पूरा सौर मंडल, पूरा ब्रह्मांड वस्तुतः हमारी कल्पना के बाहर है कि भगवान के पास कितना शक्ति है। और वो भगवान मां विष्णु भगवान कृष्ण के कलांश हैं, तो ये भगवान का अद्भुत तेज है। बस भगवान ये है कि भगवान तुरंत प्रकट नहीं करते हृदय में, जब भक्ति बढ़ जाती है तब हम इस बात को समझ पाते। तो विचार कीजिएगा कि हम कितने महान व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। आगे पढ़िए,
श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शिव ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं।
क्या है शिव विरंचि नितम, है ना, ये श्लोक है।
शरम शब्द
है? एक 12वें अध्याय स्कंद श्लोक है ना, ध्यानावस्थतगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, ऐसे करके श्लोक आता है। यम ब्रह्मा वरुणादि बोल रहा हूं, बहुत सुंदर गाते हैं हमारे प्राणनाथ प्रभु। यम ब्रह्मा मरुतादि गायन्ति समसामगा, ऐसे करके मतलब सारे जितने भी देवतागण हैं, ब्रह्मा जी, रुद्रगण, मरुद्रगण, सब गण भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। और हम लोगों ने याद है भागवत में चर्चा किया था स्वर्गाया लोकाया, जिनका गुणगान स्वर्ग में भी होता है, याद आ रहा है आपको? तो भगवान कृष्ण का गुणगान सारे देवतागण भी करते हैं। आगे पढ़िए,
अक्षरम शब्द अत्यंत तो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जगत विनाशशील है किंतु भगवान इस जगत से परे है, वे समस्त कारणों के कारण है। अतः
ध्यान देना चाहिए जगत से परे है का अर्थ क्या है, यानी विनाशशील नहीं है। और एक अमेजिंग बात है, जब बोलते हैं स ऐक्षता बहु श्यामा, उन्होंने देखा और सृष्टि हो गई, इसका अर्थ क्या है? उनकी आंखें थी, समझ में आ रहा है, और उनकी आंखें चिन्मय थी क्योंकि उससे पहले सृष्टि नहीं थी, समझ में आ रहा है, और उन्होंने सृष्टि पे दृष्टिपात किया, सृष्टि हो गई। तो कुछ लोग, हमने पहले भी मजाक किया था, कभी कभी वो गाते हैं सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सुना आपने, सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं था, ये बेवकूफी की बात है, सब कुछ था, हमेशा रहता है,
हमारा दृष्टि से
हमारी दृष्टि के बाहर है। जैसे महाराज समझा रहे थे अधोक्षज का अर्थ केवल भगवान कृष्ण ही है, क्योंकि जितने भी देवता भी हैं वो भी त्रिगुणात्मक शरीर वाले ही, लेकिन भगवान कृष्ण ही है जो गुणों के परे हैं उनका, और वो इंद्रियों के भी परे हैं। यस,
अतः वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वे परमेश्वर हैं।
और ये भी ध्यान देना चाहिए कि बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं और उनसे बिल्कुल अलग भी हैं, क्योंकि बद्ध जीवों के को विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, लेकिन जब भगवान यहाँ पे सामने आते हैं तो अपने चिन्मय स्वरूप को प्रकट करते हैं, ये आप उनमें ये नहीं कह सकते कि वो शरीर धारण करते हैं, समझ में आ रहा है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की देवता को समझता है तो वह भी शरीर त्यागने के बाद नरक चला जाता है, नहीं नरक नहीं जाता, ओ भगवान के धाम चला जाता है, मैं जस्ट चेक कर रहा था, आप सो तो नहीं रहे। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।